श्री परमात्मने नमः। गीता का सार। गीता का सार अध्याय 10 श्लोक 7। ईश्वर की महिमा समझना ही है सच्चा भक्त होना। जय श्री कृष्ण। नमस्कार और स्वागत है आपका जगत का सार में, जहां हम हर दिन श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक की गहराई में उतरते हैं। रुकिए, एक सवाल है आपसे, क्या वाकई आप इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? सोचिए जरा। जब किसी को प्रभु की वाणी सुनने का सौभाग्य मिलता है, तो क्या वह यूं ही जाने दिया जाता है? अगर आप अब तक सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, ये कोई संयोग नहीं, ये प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम शक्ति का संदेश है, जो आपको कुछ कहना चाहती है। हम तो बस एक जरिया हैं, असली संदेशवाहक तो वही हैं। तो बताइए, क्या आप इस अनमोल अवसर को अधूरा छोड़ना चाहेंगे या अंत तक साथ चलेंगे? पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि वो ही सभी प्राणियों के बीज स्वरूप हैं, हर चीज की शुरुआत वही है। उन्होंने बताया कि जो भी अस्तित्व में है, उसमें उनका अंश है। टुडेज श्लोक अध्याय 10 श्लोक 7। श्लोक: एता विभूति योग च मम यो वेत्ति तत्वता सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। भावार्थ: जो पुरुष मेरी इन विभूतियों डिवाइन ऑप्युलेंसेस और योग शक्ति डिवाइन पावर्स को तत्व से जानता है, वह अचल योग में स्थित हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजक शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मी कांत कमल नयन योगिभि ध्यान गम्यं वंदे विष्णो भव भैहरं सर्व लोकैक नाथम्। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिष्ते गायन्ति यम सामगाः ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यांतर न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चानूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम।
भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानने का फल। श्लोक 7। एता विभूति योगिन च मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकम्पेन योगिन युज्यते नात्र संशय। उच्चारण की विधि: एताम विभूतिम योगम च मम यह वेत्ति तत्वतः सह अविकम्पेन योगिन युज्यते न अत्र संशय। सात शब्दार्थ: यह अर्थात जो पुरुष, मम अर्थात मेरी, एताम अर्थात इस, विभूतिम अर्थात परमेश्वर्य रूप विभूति को, च अर्थात और, योगम अर्थात योग शक्ति को, तत्वतः अर्थात तत्व से, वेत्ति जानता है, सह अर्थात वह, अविकम्पेन अर्थात निश्चल, योगेन अर्थात भक्तियोग से, युज्यते अर्थात युक्त हो जाता है, अत्र अर्थात इसमें, कुछ भी, संशय अर्थात संशय, न अर्थात नहीं है। अर्थ: जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्तियोग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। साथ व्याख्या: एता विभूति योगं च मम, एताम सर्वनाम अत्यंत समीप का लक्ष्य कराता है। यहां यह शब्द चौथे से छठे श्लोक तक कही हुई विभूति और योग का लक्ष्य कराता है। विभूति नाम भगवान के ऐश्वर्य का है और योग नाम भगवान की अलौकिक विलक्षण शक्ति अनंत सामर्थ्य का है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की शक्ति का नाम योग है और उस योग से प्रकट होने वाली विशेषताओं का नाम विभूति है। चौथे से छठे श्लोक तक कही हुई भाव और व्यक्ति के रूप में जितनी विभूतियां हैं, वे तो भगवान के सामर्थ्य से प्रभाव से प्रकट हुई विशेषताएं हैं और मेरे से पैदा होते हैं, मत्तः मानसा जाता, यह भगवान का योग है, प्रभाव है। इसी को नवें अध्याय के पांचवें श्लोक में पश्य में योगमैश्वरम, मेरे इस ईश्वरीय योग को देख, पदों से कहा गया है। ऐसे ही आगे 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में अर्जुन को विश्वरूप दिखाते समय भगवान ने पश्चिमे योगमैश्वरम पदों से अपना ऐश्वर्यमय योग देखने के लिए कहा है। विशेष बात, जब मनुष्य भोग बुद्धि से भोग भोगता है, भोगों से सुख लेता है, तब अपनी शक्ति का ह्रास और भोग्य वस्तु का विनाश होता है। इस प्रकार दोनों तरफ से हानि होती है। परंतु जब वह भोगों को भोग बुद्धि से नहीं भोगता, अर्थात उसके भीतर भोग भोगने की किंचन मात्र भी लालसा उत्पन्न नहीं होती, तब उसकी शक्ति का ह्रास नहीं होता। उसकी शक्ति सामर्थ्य निरंतर बनी रहती है। वास्तव में भोगों के भोगने में सुख नहीं है, सुख है भोगों के संयम में। यह संयम दो तरह का होता है, एक दूसरों पर शासन रूप संयम और दो अपने पर शासन रूप संयम। दूसरों पर शासन रूप संयम का तात्पर्य है दूसरों का दुख मिट जाए और वे सुखी हो जाए, इस भाव से दूसरों को उन्मार्ग से बचाकर सन्मार्ग पर लगाना। अपने पर शासन रूप संयम का तात्पर्य है अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग करना और स्वयं किंचन मात्र भी सुख न भोगना। इन्हीं दोनों संयमों का नाम योग अथवा प्रभाव है। ऐसा योग अथवा प्रभाव सर्वोपरि परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक होता है, दूसरों में यह साधन साध्य होता है। स्वार्थ और अभिमान पूर्वक दूसरों पर शासन करने से, अपना हुक्म चलाने से दूसरा वश में हो जाता है, तो शासन करने वाले को एक सुख होता है। इस सुख में शासक की शक्ति सामर्थ्य क्षीण हो जाती है और जिस पर वह शासन करता है वह पराधीन हो जाता है। इसलिए स्वार्थ और अभिमान पूर्वक दूसरों पर शासन करने की अपेक्षा स्वार्थ और अभिमान का सर्वथा त्याग करके दूसरों का हित हो, मनुष्य नश्वर भोगों में न फंसे। मनुष्य अनादिकाल से अनंत दुःखों को भोगते आए हैं, अतः वे सदा के लिए इन दुःखों से छूटकर महान आनंद को प्राप्त हो जाए, ऐसी बुद्धि से दूसरों पर शासन करना बहुत श्रेष्ठ और विलक्षण शासन संयम है। इस शासन की आखिरी हद है भगवान का शासन अर्थात संयमन, इसी का नाम योग है। योग नाम समता संबंध और सामर्थ्य का है। जो स्थिर परमात्म तत्व है उसी से अपार सामर्थ्य आती है, कारण कि वह निर्विकार परमात्म तत्व महान सामर्थ्यशाली है। उसके समान सामर्थ्य किसी में हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। मनुष्य में आंशिक रूप से वह सामर्थ्य निष्काम होने से आती है, कारण कि कामना होने से शक्ति का क्षय होता है और निष्काम होने से शक्ति का संचय होता है। आदमी काम करते करते थक जाता है तो विश्राम करने से फिर काम करने की शक्ति आ जाती है, बोलते बोलते थक जाता है तो चुप होने से फिर बोलने की शक्ति आ जाती है, जीते जीते आदमी मर जाता है तो फिर जीने की शक्ति आ जाती है। सर्ग में शक्ति क्षीण होती है और प्रलय में शक्ति का संचय होता है। तात्पर्य यह हुआ कि प्रकृति के संबंध से शक्ति क्षीण होती है और उससे संबंध विच्छेद होने पर महान शक्ति आ जाती है। यो वेत्ति तत्वतः विभूति और योग को तत्व से जानने का तात्पर्य है कि संसार में कारण रूप से मेरा जो कुछ प्रभाव सामर्थ्य है और उससे कार्य रूप में प्रकट होने वाली जितनी विशेषताएं हैं, अर्थात वस्तु व्यक्ति आदि में जो कुछ विशेषता दिखने में आती है, प्राणियों के अंतःकरण में प्रकट होने वाले जितने भाव हैं और प्रभावशाली व्यक्तियों में ज्ञान दृष्टि से विवेक दृष्टि से तथा संसार की उत्पत्ति और संचालन की दृष्टि से जो कुछ विलक्षणता है, उन सबके मूल में मैं ही हूं और मैं ही सबका आदि हूं। इस प्रकार जो मेरे को समझ लेता है, तत्व से ठीक मान लेता है, तो फिर वह उन सब विलक्षणताओं के मूल में केवल मेरे को ही देखता है। उसका भाव केवल मेरे में ही होता है, व्यक्तियों वस्तुओं की विशेषताओं में नहीं। जैसे सुनार की दृष्टि गहनों पर जाती है तो गहनों के नाम आकृति उपयोग पर दृष्टि रहते हुए भी भीतर यह भाव रहता है कि तत्व से यह सब सोना ही है। ऐसे ही जहां कहीं जो कुछ भी विशेषता दिखे उसमें दृष्टि भगवान पर ही जानी चाहिए कि उसमें जो कुछ विशेषता है वह भगवान की ही है, वस्तु व्यक्ति क्रिया आदि की नहीं। संसार में क्रिया और पदार्थ निरंतर परिवर्तनशील हैं। इनमें जो कुछ विशेषता दिखती है वह स्थायी रूप से व्यापक परमात्मा की ही है। जहां जहां विलक्षणता अलौकिकता आदि दिखे वहां वहां वस्तु व्यक्ति आदि की ही विलक्षणता मानने से मनुष्य उसी में उलझ जाता है और मिलता कुछ नहीं। कारण कि वस्तुओं में जो विलक्षणता दिखती है वह उस अपरिवर्तनशील परमात्म तत्व की ही झलक है, परिवर्तनशील वस्तु की नहीं। इस प्रकार उस मूल तत्व की तरफ दृष्टि जाना ही उसे तत्व से जानना अर्थात श्रद्धा से दृढ़ता पूर्वक मानना है। यहां जो विभूतियों का वर्णन किया गया है इसका तात्पर्य इनमें परिपूर्ण रूप से व्यापक परमात्मा के ऐश्वर्य से है। विभूतियों के रूप में प्रकट होने वाला मात्र ऐश्वर्य परमात्मा का है। वह ऐश्वर्य प्रकट हुआ है परमात्मा की योग शक्ति से। इसलिए जिस किसी में जहां कहीं विलक्षणता दिखाई दे वह विलक्षणता भगवान की योग शक्ति से प्रकट हुए ऐश्वर्य विभूति की ही है, न कि उस वस्तु की। इस प्रकार योग और विभूति परमात्मा की हुई तथा उस योग और विभूति को तत्व से जानने का तात्पर्य यह हुआ कि उसमें विलक्षणता परमात्मा की है। अतः दृष्टा की दृष्टि केवल उस परमात्मा की तरफ ही जानी चाहिए। यही इनको तत्व से जानना अर्थात मानना है। भक्ति का प्रकरण होने से यहां तत्वतः वेत्ति तत्वतः जानना का अर्थ तत्वतः मानना ही लेना चाहिए। कारण कि यहां भगवान ने तत्वतः वेत्ति का फल अपने में दृढ़ भक्ति होना बताया है और आगे के श्लोक में भी संसार मात्र का मूल कारण मैं ही हूं और सब संसार मेरे से ही चेष्टा करता है ऐसा मानकर इति मत्वा भजन करने की बात कही है। जैसे जानना दृढ़ होता है ऐसे ही मानना भी दृढ़ होता है, अर्थात दृढ़ मान्यता तत्व ज्ञान की तरह ही फल देती है। जैसे मैं हिंदू हूं मैं अमुक वर्ण वाला हूं आदि मान्यताओं को जब तक स्वयं नहीं छोड़ता तब तक ये मान्यताएं छूटती नहीं। इसी तरह इन सब विभूतियों के मूल में भगवान ही है, यह मान्यता कभी मिटती नहीं। वर्ण संप्रदाय आदि की मान्यता सच्ची नहीं है, प्रत्युत शरीर को लेकर होने से प्राकृत है और मिटने वाली है। परंतु सबके मूल में परमात्मा है, यह मान्यता सच्ची है वास्तविक है। अतः यह मान्यता कभी मिटती नहीं, प्रत्युत ज्ञान तत्व से जानना में परिणत होकर ज्ञान स्वरूप हो जाती है। सोविकम्पेन योगेन युज्यते, उसकी मेरे में दृढ़ भक्ति हो जाती है। दृढ़ कहने का तात्पर्य है कि उसकी मेरे सवाय कहीं भी किंचन मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं होती। अतः उसका आकर्षण दूसरे में न होकर एक मेरे में ही होता है। नात्र संशय, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि अगर उसको कहीं भी किंचन मात्र भी संदेह होता है तो उसने मेरे को तत्व से नहीं माना है। कारण कि उसने मेरे योग को अर्थात विलक्षण प्रभाव को और उससे उत्पन्न होने वाली विभूतियों को ऐश्वर्य को मेरे से अलग मानकर महत्व दिया है। मेरे को तत्व से जान लेने के बाद उसके सामने लौकिक दृष्टि से किसी तरह की विलक्षणता आ जाए तो वह उस पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। उसकी दृष्टि उस विलक्षणता की तरफ न जाकर मेरी तरफ ही जाएगी। अतः उसकी मेरे में स्वाभाविक ही दृढ़ भक्ति होती है। परिशिष्ट भाव, संसार में जो कुछ विलक्षणता विशेषता देखने में आती है वह सब भगवान का योग अर्थात विलक्षण प्रभाव सामर्थ्य है। उस विलक्षण प्रभाव से प्रकट होने वाली विशेषता विभूति है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की विभूति और योग को तत्व से जान लेता है उसकी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाती है। एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, ऐसा संदेह रहित दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेना ही तत्व से जानना है। इस प्रकार तत्व से जानने वाले को भगवान ने ज्ञानवान कहा है। गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। अविकम्प अविचल योग कहने का तात्पर्य है कि वह भक्तियोग खुद भी नहीं हिलता और उसको कोई हिला भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। जैसे रुपयों से सब वस्तुएं मिल जाती हैं ऐसा मानकर साधारण मनुष्य रुपयों को ही महत्व देता है और उसका रुपयों में आकर्षण हो जाता है। ऐसे ही जो कुछ प्रभाव महत्व दिखता है वह सब भगवान का ही है, ऐसा जानने पर मनुष्य की भगवान में ही दृढ़ भक्ति हो जाती है। नात्र संशय कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं है तो फिर इसमें संशय कैसे हो। इसमें संशय होने का अवकाश ही नहीं है, क्योंकि जहां दो सत्ता होती है वहीं संशय होता है। एक भगवान के सिवाय और कोई है ही नहीं तो फिर वृत्ति कहा जाएगी, क्यों जाएगी, किसमें जाएगी और कैसे जाएगी। इसलिए एक भगवान में ही अविचल भक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरी विभूति और योग को तत्व से जानने वाला अविचल भक्ति से युक्त हो जाता है। अतः विभूति और योग को तत्व से जानना क्या है, इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं।
समस्या: भक्ति करते हैं लेकिन मन डगमगाता रहता है, कभी विश्वास कभी संशय। समाधान: ईश्वर की विभूतियां और योग शक्ति को जानने से अधिक विश्वास उत्पन्न होता है। जिसे ईश्वर की महिमा समझ में आ जाती है वह संशय से मुक्त हो जाता है। तो अगली बार जब विश्वास डगमगाए, गीता पढ़िए और ईश्वर की शक्तियों को पहचानिए। आज का प्रश्न विद उत्तर। प्रश्न: कौन व्यक्ति अचल योग में स्थित हो जाता है? विकल्प: जो केवल पूजा करता है, बी जो योग करता है, सी जो ईश्वर की विभूतियों और योग को तत्व से जानता है, डी जो ध्यान करता है। सही उत्तर: सी जो ईश्वर की विभूतियों और योग को तत्व से जानता है। व्याख्या: केवल कर्म करना या पूजा करना पर्याप्त नहीं है, तत्वज्ञान से भक्ति स्थिर होती है। जब हम भगवान की व्यापकता और उनकी शक्ति को समझते हैं तब भक्ति में डगमगाहट नहीं रहती। आज की पुस्तक सिफारिश पेड प्रमोशन श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका सहित मोटे अक्षरों में, पढ़ने में आसान, माता पिता बुजुर्गों या रोज ध्यान करने वालों के लिए आदर्श। अमेज़न से खरीदे https://mzn.to/42drnxb। कल हम जानेंगे अध्याय 10 श्लोक 8 में कि ईश्वर स्वयं को कैसे सर्वकारण और सर्वशक्ति बताते हैं। मैं ही सबका आदि मध्य और अंत हूँ। तैयार रहिए एक और दिव्य श्लोक के लिए। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए।